प्ले और ऐप स्टोर पर दस्तयाब है।
अस्सलाम वालेकुम। पाकिस्तान में इस वक्त रात के 9, भारत में 9:30 और यहाँ हमारे स्टूडियोज की घड़ियों में दिन के 12 बज रहे हैं। वॉइस ऑफ अमेरिका वॉशिंगटन की उर्दू सर्विस से मैं हूँ खालिद हमीद, खबरों के एक बुलेटिन के साथ। आलमी इदारे सेहत के यूरोपियन ब्रांच के सरबराह हांस क्लोगे का कहना है कि इदारे के माहरीन अक्टूबर और नवंबर के दौरान कोविड-19 से होने वाली हलाकतों में इजाफे की तवक्को जाहिर कर रहे हैं। न्यूज एजेंसी AFP को इंटरव्यू देते हुए हांस क्लोगे का कहना था कि 2 माह के दौरान सूरत हाल शदीद तर हो जाएगी। क्लोगे ने मजीद खबरदार किया कि वैक्सीन से कोरोना वायरस का खात्मा नहीं होगा। उन्होंने कहा कि अभी हम ये नहीं जानते कि वैक्सीन से आबादियों के तमाम तबकात को मदद मिलेगी या नहीं। उन्होंने मजीद कहा कि अगर हमें मुतअद्दिद अक़साम की वैक्सीन मंगवाना पड़ेगी तो उससे पेचीदगी में बेपनाह इजाफा हो जाएगा। क्लोगे का कहना था कि कोरोना वायरस से नजात वो लम्हा होगा जब हम एक मुकम्मल बिरादरी की सूरत में इस वायरस के साथ रहना सीख जाएंगे। बरतानिया और स्वीडन के मुश्तरका दवासाज कंपनी एस्ट्राजेनिका ने अपनी तैयार करदा कोरोना वायरस वैक्सीन की जांच सेफ्टी के निगरान इदारों से इजाजत के बाद दोबारा शुरू कर दी है। कंपनी ने वैक्सीन की जांच उस वक्त आर्जी तौर पर मुअत्तल कर दी थी जब एक मरीज की हालत वैक्सीन लेने के बाद बिगड़ गई थी। एस्ट्राजेनिका की वैक्सीन इस वक्त दुनिया भर के मुख्तलिफ मुल्कों में तैयार की जाने वाली लगभग 9 वैक्सीनों में से एक है। ये तमाम वैक्सीन इस वक्त जांच के मुख्तलिफ मराहिल से गुजर रही हैं। इस वक्त दुनिया में 2,90,00,000 से ज्यादा कोरोना वायरस के मरीज मौजूद हैं और आलमी सतह पर इससे 9,24,000 से ज्यादा अमवात हो चुकी हैं। अमरीका 60,00,000 केसेस के साथ बदस्तूर सर फहरिस्त है जबकि भारत 48,00,000 केसेस के साथ दूसरे और ब्राज़ील 43,00,000 केसेस के साथ तीसरे नंबर पर है। पाकिस्तान में कोरोना वायरस के केसेस की मजमूई तादाद 3,00,000 से तजावुज़ कर गई है। पाकिस्तान में गुज़श्ता 24 घंटों में मज़ीद 6 मरीज़ फौत हो गए हैं। सरकारी आदाद व शुमार के मुताबिक पाकिस्तान में 534 अफराद में वायरस की तशखीस हुई है। भारत में कोरोना वायरस के मज़ीद 94,000 से ज़ायद केसेस सामने आ गए हैं। फ्रांस में पहली बार कोरोना के 10,000 से ज्यादा केस रिपोर्ट हुए हैं। दोहा में अफगान और तालिबान फरीकों ने छोटी टीमें राबता ग्रुप कायम कर दिए हैं। दोहा से अफगान सर्विस के नुमाइंदे रहीम गुल सरवान के मुताबिक ट्विटर पैगामात बताते हैं कि दोनों फरीकों ने कल रात मुलाकात की और अपनी मुलाकातों और मुजाकरात के कवानीन तरीक़ेकार और औकातेकार देखिए। दोनों फरीक आज भी उन उमूर पर बातचीत जारी रखेंगे। बराह रास्त मुज़ाकरात जल्द से जल्द शुरू हो सकते हैं। ज़राए के मुताबिक अफगान हुकूमत की टीम तशद्दुद में कमी का मुतालबा करेगी। अफगानिस्तान में क़याम अमन और मुस्तकबिल के सियासी ढांचे के बारे में इंट्रा अफगान मुज़ाकरात के एक दिन के वक्फे के बाद शुरू होते ही अफगान तालिबान ने गैर मुल्कियों के लिए कवायद व ज़वाबित का ऐलान कर दिया। इन कवायद के तमाम गैर मुल्की महाजरीन और उनके बकौल मुजाहिदीन के मामलात के लिए तालिबान ही के इंटेलिजेंस में खसूसी कमेटी कायम की जाएगी और तमाम गैर मुल्कियों को इंदराज के बाद शनाख्ती कार्ड्स जारी किए जाएंगे। गैर मुल्कियों को न तो अफगानिस्तान के अंदरूनी सियासी मजहबी इंतजामी और सिक्योरिटी मामलात में मुदाखलत की इजाज़त होगी और न हमसाय ममालिक में। ये तमाम लोग हुकूमत ही के निशान करदा इलाकों में रिहाइश पसीर होंगे और उन्हें किसी भी तौर मकामी लोगों से मेलजोल की इजाज़त नहीं होगी। अमरीका की जानिब से नुमाइंदे खसूसी बराए अफगान मुफाहमत ज़ल्म खलीलजाद दो रोज़ा दौरे पर इस्लामाबाद पहुँच गए हैं। सरकारी ज़राए के मुताबिक खलीलजाद अपने क़याम के दौरान पाकिस्तान में आला सियासी और अस्करी हुकाम से मुलाकातें करेंगे। वाज़ेह है कि तालिबान और अफगान हुकूमत के दरमियान हफ्ते के रोज़ बैन अफगान मुज़ाकरात के शुरू होने के बाद अमरीकी नुमाइंदे खसूसी के दौरे पाकिस्तान को ख़ास अहमियत दी जा रही है। अफगानिस्तान में तवील जंग के खात्मे के लिए बैन अफगान मुज़ाकरात शुरू होने के बावजूद अफगान फोर्सेज और तालिबान के दरमियान झड़पों का सिलसिला जारी है। अफगान वजारत दिफा के तर्जमान फवाद अम्मान ने कहा है कि बैन अफगान मुज़ाकरात के आगाज से कबल तवक्को की जा रही थी कि तालिबान की जानिब से हमलों में कमी आएगी लेकिन बदकिस्मती से सिक्योरिटी फोर्सेज पर हमलों की तादाद में इजाफा हो गया है। उन्होंने कहा कि तालिबान की जानिब से हफ्ते को किए जाने वाले हमलों से मुतालिक उनके पास दुरुस्त मालूमात नहीं है, अलबत्ता इन हमलों में कमी के बजाय इजाफा हुआ है। खबरें खत्म हुई।
ये वॉइस ऑफ अमेरिका है। आप हमारे प्रोग्राम फेसबुक पर भी बराहे रास्त देख सकते हैं। पता है facebook.com/voaurdu।
वॉइस ऑफ अमेरिका वॉशिंगटन से हम आपके लिए प्रोग्राम पेश कर रहे हैं राउंड टेबल।
अस्सलाम वालेकुम सामीन, शहनाज अजीज हाजिर है आज की राउंड टेबल के साथ। गुज़िश्ता हफ्ते हमने बात की थी पाकिस्तान में स्कूल 15 सितंबर से मरहलावार दोबारा खोलने के ऐलान के बारे में, और आज हमारी गुफ्तगू इसी बारे में भारत से मुतालिक है। इंडिया में भी इस बारे में एक डिबेट जारी है कि स्कूल कब खुलने चाहिए, किस तरह खुलने चाहिए, और वहाँ इरादा ये है कि अक्टूबर में स्कूल खोले जाएँ। इस बारे में बात करने के लिए हमारे साथ हैं डॉक्टर अनिल कुमार गुप्ता साहब, जो भारत के नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ डिजास्टर मैनेजमेंट में एक माहिर हैं और पॉलिसी से मुतालिक उमूर पर काम करते हैं। उनका इदारा जो है मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स के तहत आता है। डॉक्टर जुगल किशोर साहब, जो एक मेडिकल कॉलेज में कम्युनिटी मेडिसिन के शोबे के सरबरा हैं। इसके अलावा वो रिसर्च में एक बहुत मुमताज मकाम रखते हैं और उनके सैकड़ों पेपर्स दुनिया भर के साइंसी जर्नल्स में शाया होते हैं। शिलानी त्रिपाठी साहिबा ADR पब्लिकेशंस के डायरेक्टर हैं गाजियाबाद UP में। उनका अदारा साइंस से मुतालिक रिसर्च पेपर्स और जर्नल पब्लिश करता है। उन्होंने हमारे लिए कुछ माओं के इंटरव्यूज भी रिकॉर्ड किए हैं जो इस डिबेट में शामिल हैं कि स्कूल खोले जाएं या नहीं खोले जाएं। तो मैं खुशामदीद कहती हूं आप सबको आज के इस प्रोग्राम में, आपने हमारे लिए वक्त निकाला। और मैं आगाज़ करूंगी डॉक्टर अनिल कुमार गुप्ता से, क्योंकि आपका ताल्लुक पॉलिसी साजी से है। सबसे पहले मैं चाहूंगी थोड़ा सा आप वजाहत करें कि आप क्या, यानी आपकी काम की नौयत क्या है।
जी, जो डिपार्टमेंट है जो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का डिजास्टर मैनेजमेंट के लिए, हमारा भारत में जो डिजास्टर मैनेजमेंट एक्ट 2005 में लागू हुआ, उस एक्ट के तहत नेशनल लेवल पे और जो जो प्रोविंस के लेवल पे, जो स्टेट के लेवल पे और लोकल लेवल पे जो सारी तैयारियां होती हैं और जिस तरीके से सारे सारे अरेंजमेंट्स होते हैं, और जब कोई भी इस तरीके से जो डिजास्टर आता है तो उसको मैनेज करते हैं, तो ये सारी चीजों के बारे में जो हमारा, मैं जिस इंस्टीट्यूट में काम करता हूँ जहाँ पर मैं प्रोफेसर हूँ, तो वो एक थिंक टैंक है जो ये पॉलिसीज को तय करने में और प्लान्स को तय करने में सभी मिनिस्ट्रीज की हम हेल्प करते हैं, और बाकी पड़ोसी मुल्कों के साथ भी मिलकर काम करते हैं और जो इंटरनेशनल एजेंसीज है उनके साथ भी मिलकर काम करते हैं और उनको भी मदद करते हैं। इस तरीके से हम काम करते हैं। और जो कोरोना वायरस पेंडेमिक आया तो हिंदुस्तान में उसको भी हमने डिजास्टर की लिस्ट में शामिल किया।
मेरा ख्याल है इतनी तो जो सारी दुनिया में फैल गया, ऐसी डिजास्टर तो शायद दुनिया ने कभी देखी भी नहीं होगी, आलमी जंगे हुई इनके अलावा। जुगल किशोर साहब, आपसे भी मैं यही सवाल पूछूंगी कि पिछली बार बात नहीं हुई थी तफसील से, थोड़ा सा हमें कम्युनिटी मेडिसिन के बारे में बताइए और आप किस नौयत के पेपर्स वगैरह आप लिखते हैं और रिसर्च क्या है आपकी।
पहले तो मैं आपका शुक्रिया अदा करूंगा कि आपने हमें फिर दोबारा से बुलाया, बात करने का मौका दिया। मैं एक मेडिकल कॉलेज में प्रोफेसर हूँ और साथ में हेड भी करता हूँ उस डिपार्टमेंट को। ये डिपार्टमेंट कम्युनिटी मेडिसिन को एक सबसे अहम डिपार्टमेंट कहा जा सकता है, क्योंकि और दूसरे जो डिसिप्लिन है जैसे मेडिसिन सर्जरी या फिर आपकी पल्मोनरी मेडिसिन, ये सारे जो मेडिसिन है वो एक मरीज को देखता है या उसको ट्रीट करता है, उसका डायग्नोसिस करता है और ट्रीट करता है, लेकिन हमारा जो डिसिप्लिन है वो पूरे समाज को या पूरी जो कौम होती है या पूरा जो एक स्टेट है उसमें कौन कौन सी बीमारियां हैं, उनको हम कैसे लार्ज स्केल पर कैसे हम उसको प्रिवेंट कर सकते हैं, ट्रीट कर सकते हैं। तो ये जो मसला है कोरोना का, ये एक अब इंडिविजुअल डिजीज के रूप में नहीं हम इसको ट्रीट कर सकते, इसको हम नेशनल और इंटरनेशनल लेवल पे ट्रीट कर सकते हैं। तो ये कम्युनिटी मेडिसिन का ही क्षेत्र है या ये हमारा ही एक्सपर्टाइज है।
अच्छा, शुक्रिया। और शिलानी जी, आप थोड़ा सा बताइएगा अपनी पब्लिकेशंस के बारे में।
हम लोग जर्नल्स पब्लिश करते हैं एंड डेफिनेटली इस कोरोना के पीरियड ने हमारे हमारे क्या सारे ही बिजनेस को बहुत इफेक्ट किया है, बिकॉज सारी चीजें होल्ड पे चली हुई है। मुझे तो ये लगता है कि जिस तरीके से भी मैनेजमेंट हो रहा है कोरोना वायरस का, इससे और बेहतर तरीके से हो सकता है अगर हम प्रिवेंशन प्रिकॉशंस जो भी है ये सारे लोग लें, तो थोड़ा थोड़ा ब्रेक में लोगों को बाहर निकलने दें, बच्चों को भी, बड़ों को भी, सबको, और ये वेल मैनेज हो सकता है, क्योंकि अब दिख नहीं रहा कि वैक्सीन आ रहा है या फिर कोई और चेंजेस ऐसे बड़े होने वाले हैं जिससे एकदम से गायब हो जाएगा। तो आगे के लिए हमें शायद इसके साथ रहना है, और इसके साथ हमें मतलब सिखाया जाए जनता को कि किस तरीके से इसके साथ चले, बिकॉज तभी हम सारे लोग भी सर्वाइव कर पाएंगे एज अ पब्लिशर, एज स्टूडेंट्स, एज ऑथर्स, ऑल ऑफ अस, बिकॉज हमें बाहर तो निकलना ही है।
बिल्कुल सही। और अंदाज़ा तो ये हुआ कि दुनिया, पूरी दुनिया में इसके असरात जो हैं, सिर्फ ये नहीं कि कोई एक बीमारी है, बल्कि मईशत है, तालीम है, जो भी शोबा है उस पर इसका असर पड़ा है। तो आज चूंकि हम एजुकेशन के बारे में बात कर रहे हैं, तो डॉक्टर गुप्ता पहले तो मैं आपसे कहूँगी, इससे बड़ा डिजास्टर आपने कोई पहले देखा जो जिसका इतना इस असरात के लिहाज से कितने बड़े दूर दूर तक इसके असरात हैं?
बिल्कुल, आप देखें तो दोनों मामले में देखें कि पहले भी ऐसे कुछ डिजास्टर हुए हैं जिनको हम ट्रांसबाउंड्री टाइप डिजास्टर कहते थे, और पेंडेमिक भी कुछ हुए हैं ऐसे, लेकिन इस इतनी इतनी बड़ी इतना बड़ा जो डिजास्टर है वो कभी नहीं हुआ कि 140 से ज्यादा मुल्क इसमें अफेक्ट हुए हैं, और भी ज्यादा, बहुत ज्यादा, और मुझे लगता है कि पूरी दुनिया में इसका असर हुआ है, पूरी इकोनॉमी पे इसका असर हुआ है, हर तरह की इंडस्ट्री पे, हर तरह के सेक्टर पे इसका असर हुआ है, और तो और जो सोशियो पॉलिटिकल सिस्टम है पूरी पूरी दुनिया का, डिफरेंट डिफरेंट कंटिनेंट्स के बीच में, तमाम मुल्कों के बीच में जो रिश्ते हैं, वहां तक इसके इसके जो डायरेक्ट और इनडायरेक्ट रिलेशन को अगर देखें तो वो भी उन तक चीजों पर फर्क पड़ा है।
बिल्कुल,
बिजनेस पे तो पड़ा ही है,
बिल्कुल, और खासकर बड़े मुल्कों के दरमियान,
बिल्कुल, और जिंदगी के हर पहलू पे इसका फर्क पड़ा है। तो ऐसा डिजास्टर शायद रेयर है जो 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 इस इतना ज्यादा जिसका फर्क हो कि जिंदगी के हर पहलू को इसने अफेक्ट किया है। जी,
तो अब हम फिर, क्योंकि आज बात सिर्फ हम एजुकेशन पे कर रहे हैं, तो आप मुझे बताइए, क्योंकि आप एक नेशनल लेवल पर जो है बनाते हैं स्ट्रेटेजी जो है, तो इस वक्त माँ बाप तो हैं, मतलब जाहिर है एक अपने बच्चे की तालीम के लिए परेशान भी हैं, फिर डरते भी हैं कि अगर हमने भेजा है स्कूल या कॉलेज तो कहीं उनको ये वायरस ना लग जाए। तो आप क्या समझते हैं एक एक्सपर्ट की हैसियत से कि इंडिया में, क्योंकि आपके पड़ोसी मुल्क पाकिस्तान में 15 से स्कूल खुल रहे हैं, 15 सितंबर से, उन्होंने ये किया है कि उन्होंने जो छोटे बच्चे हैं उनका सबसे आखिर में रखा है खोलने का मामला, देख के पहले देखेंगे तो 30 सितंबर के बाद उनके स्कूल खोलेंगे। मगर बहुत से लोग ये भी कहते हैं कि सबसे पहले तो बच्चों के स्कूल खुलने चाहिए थे, क्योंकि जो बड़े बच्चे हैं और स्टूडेंट्स हैं वो तो ऑनलाइन पढ़ सकते हैं, लेकिन बच्चे हैं जो सबसे ज्यादा सफर कर रहे हैं। तो आप मुझे बताइए कि आपकी क्या ओपिनियन है?
नहीं, ये दो तरह की जो बातें हैं वो अपने आप में एक तरीके से देखें तो दोनों में कुछ तो वजन दोनों तरफ है, क्योंकि लॉकडाउन जब शुरू हुआ तब ये अंदाजा नहीं था कि इतना लंबा समय हमें लग जाएगा, और अभी अभी भी पेंडेमिक से हम कोई बाहर नहीं आए हैं, अभी भी हम ये नहीं कह सकते कि पेंडेमिक खत्म हो गया। तो बेसिकली अब ये है कि अब एक मिक्स टाइप का रिएक्शन है कि पेंडेमिक भी बढ़ रहा है, अब देखें तो हिंदुस्तान के अंदर भी देखें और भी बहुत सारे मुल्कों में देखें, पाकिस्तान में भी देखें, लेकिन हाँ ये है कि ठीक होने वाले लोगों की भी तादाद बढ़ रही है, और अब ये है कि इसके बारे में बहुत सारी चीजें लोगों को पता है तो वो एहतियात भी लिए जा सकते हैं। तो कुछ ऐसी बातें हैं जो लग रहा है कि हम कर पा रहे हैं, लेकिन जैसा जो आपने पाकिस्तान का उदाहरण दिया तो वही उसी तरीके का एग्जाम्पल इंडिया में, क्योंकि हम लोग भी इंडिया में ऐसी बातें अभी कर रहे हैं और ऐसी स्ट्रेटजी पे बात चल रही है कि सितंबर के बाद हम लोग सितंबर जो अक्टूबर शुरू से यहाँ भी कुछ धीरे धीरे करके खोलें, उसमें भी यही है कि बड़े बच्चों की कक्षाएं करें और वो भी हम ऑप्शनल रखना चाहते हैं हिंदुस्तान में, ये नहीं होगा कि बच्चा नहीं आ पाया तो उसकी अटेंडेंस वो नेगेटिव मार्क हो जाए या एबसेंट मार्क हो जाए, और अगर किसी भी बच्चे को सर्दी खांसी जुकाम नजले की कोई भी बात आती है तो उसे वो इन्फॉर्म करना है, और वो किसी भी सूरत हाल में वो स्कूल नहीं आए और घर पे रह के आराम करके वो ठीक हो, स्कूल्स में जो थर्मल स्क्रीनिंग की व्यवस्था होनी चाहिए। तो ये इस तरह की चीजों पे अभी गाइडलाइंस बन रहे हैं, तो धीरे धीरे हमको शुरू तो करना पड़ेगा, लेकिन ये बात कहना कि छोटे बच्चों को हम एकदम लाए तो छोटे बच्चों में उनकी केयर करने में थोड़े से एडिशनल एहतियात की जरूरत पड़ती है, तो मुझे लगता है कि ऐसा भी एक्सपर्ट्स का मानना है कि बड़े बच्चों को थोड़ा सा जिम्मेदार होते हैं और दूसरा सा वो वल्नरेबल ग्रुप में नहीं आते हैं जो बड़े बच्चे होते हैं. छोटे बच्चों का थोड़ा सा ज्यादा वल्नरेबल हम मानते हैं इन्फेक्शंस के लिए.
तो डॉक्टर किशोर आपसे मैं पूछूंगी कि अगर मेडिकल की बात आती है तो बिल्कुल शुरू में जब बात हो रही थी तो ये था कि 1 से 5 साल तक के बच्चे जो हैं उनके लिए तो खतरा है, लेकिन 5 साल से जो यंग लोग हैं उनके लिए वायरस से मुतासिर होने का खतरा नहीं है उस तरह का. लेकिन ऐसा ऐसा ही पता लगा कि छोटे बच्चे भी, हर उम्र के लोग जो हैं COVID-19 का शिकार हो रहे हैं. तो अब ताज़ा तरीन रिसर्च क्या है कि किस एज ग्रुप के लिए खतरनाक है और किसके लिए नहीं है?
अगर हम देखें तो हम इस कोरोना वायरस के बारे में नई नई चीजें हर रोज कुछ ना कुछ नया हम सीख रहे हैं, लेकिन अभी तक जो रिसर्च बताती है वो यही कहती है कि जो बच्चे हैं और बच्चों में 10 साल से या 12 साल से छोटे जो बच्चे हैं उनके अंदर कोविड होने की जो परसेंटेज है वो बड़ों से कम है और वो लेस सीरियस है. लाइक उनमें सीरियसनेस, इलनेस की जो सीरियसनेस है वो बड़ों से कम है. डेफिनेटली उनमें, क्योंकि बच्चे होते हैं हमेशा लोग उनको सीरियसली इसलिए लेते हैं कि वो अभी बच्चों की तादाद भी कम होती जा रही है. हर घर में 2 या 1 बच्चे हैं तो उनको बहुत ही हिफाजत से रहते हैं सब लोग, तो इसलिए वो एक कंसर्न है. अदरवाइज अगर हम रिसर्च के बारे में सोचें तो पूरे वर्ल्ड का यही निकल के आता है कि जो सीरियसनेस है इलनेस की वो बच्चों में कम है बड़ों के मुकाबले और उनकी परसेंटेज भी कम है. और जो इन्फेक्शन होता है उनमें वो ये देखा गया है कि वो उनके फैमिली मेंबर से ही होता है, वो बाहर से नहीं होता. तो ये कहना कि नहीं वो स्कूल जाएगा तो उसको ज्यादा इन्फेक्शन हो जाएगा, तो जो भी इन्फेक्शन हो रहा है वो उसके फैमिली मेंबर है इधर उधर से ही हो रहा है. और वो जो डायनेमिक डिजीज डायनेमिक है वो तो बच्चों में भी वैसे ही है और बड़ों में भी वैसे हैं, लेकिन मॉर्टलिटी जिसको हम कहते हैं कि डेथ होने का जो चांसेस है वो बच्चों में डेफिनेटली बहुत कम है.
एक और सवाल आपसे ये है कि बहुत सारे भारत के जो पेपर्स हैं उनमें भी ये बात रिपोर्ट की गई कि दिल्ली में दूसरी लहर है ये कोविड की, जबकि मेरा ख्याल है कि आप ये कहते हैं कि अभी दूसरी लहर शुरू भी नहीं हुई है. तो इंडिया में कौन सी जगह है कोई ऐसी जगह जहां सेकंड जो वेव है वो आ गई हो कोविड की?
बहुत सारे एक्सपर्ट में डिफरेंट व्यूज हैं और मेरा ये मानना है कि अगर हम टेस्ट पॉजिटिविटी रेट को अगर देखें तो जून में ये दिल्ली का ही अगर हम एग्जांपल लें, दिल्ली में सेकेंड वेव की बारे में बात कर रहे हैं तो वो 20% 15% इस तरह से रही. फिर जैसे जैसे टेस्ट हमारे बढ़ते गए और ये कम होती चली गई, और जैसे लॉकडाउन का एंड आया और फिर लॉकडाउन खुलना शुरू हुआ तो उस वक्त में केसेस भी बहुत कम थे और नंबर ऑफ टेस्ट भी बहुत कम हो रहे थे. लेकिन उसके बाद में फिर टेस्ट बहुत तेजी से बढ़ने लगे, जो उसकी पॉजिटिविटी है वो हम देखते हैं कि वो कम होती चली गई. आज के वक्त में अगर हम 100 टेस्ट करते हैं 7 या 8% ही पॉजिटिव आते हैं. तो ये हम अगर पूरा देखें तो ये कम होता जा रहा है, और जितने हम ज्यादा टेस्ट करेंगे वो नंबर तो बढ़ेगा, लेकिन हमें देखना चाहिए कि वो पॉजिटिविटी कितना आ रही है. अगर हम आज पूरे दिल्ली को पूरा टेस्ट कर दें जिसमें 2 करोड़ है तो डेफिनेटली उसमें अचानक ही बहुत ज्यादा नंबर में केस आएंगे, लेकिन उससे हमें घबराने की जरूरत नहीं है. हमें देखना है कि पॉजिटिविटी क्या आ रही है और उसका डेथ रेट क्या है या उसकी रिकवरी क्या है या माइल्ड कितने हैं या एसिम्प्टोमेटिक कितने हैं. तो कुल मिला के ये पता चलेगा कि एक्चुअली कोई सेकेंड वेव नहीं है. जो लोग पहले घरों में छुपे हुए थे वो अब बाहर आ गए, इधर उधर अब काम अपने धंधे कर रहे हैं, काम धंधे कर रहे हैं, तो उससे उन लोगों ने अपने टेस्ट कराए या उनको खांसी जुकाम हुआ तो टेस्ट होने लगे. और टेस्ट का भी एक इशू है बहुत बड़ा कि जो एंटीजन टेस्ट है उसमें पॉजिटिविटी किस तरह की आ रही है, उसमें जो फॉल्स पॉजिटिव फॉल्स नेगेटिव ये सारी इश्यूज हैं. मतलब ये कि मेरे हिसाब से वो सेकंड वेव नहीं है. जो लोग पीछे छुपे हुए थे या घरों में थे वो सब अब सामने आए तो वो पॉजिटिव होंगे ही, और जैसे जैसे और कॉमन होता चला जाएगा लॉकडाउन खुलेगा तो हमारे नंबर ऐसे बढ़ते चला जाएगा.
ताज़ा तरीन खबरें, रेडियो प्रोग्राम्स, ऑडियो और वीडियो रिपोर्ट्स देखने, सुनने और पढ़ने के लिए अपने स्मार्टफोन पर डाउनलोड कीजिए VOA उर्दू की ऐप, जो गूगल प्ले और ऐप स्टोर पर दस्तियाब है. खबरें अब हर वक्त आपकी मुट्ठी में.
شکریہ. اور شالنی جی کا کام تو اہم ہے ہی اپنی جگہ, لیکن ان سے جو بات میں کرنا چاہوں گی وہ سب سے زیادہ عام ہے. کوئی بھی قومی سطح پر کوئی بھی ڈسکشنز ہوئے اس میں جس جو ایک ماں کی اوپینین ہوتی ہے, آپ کی بچی جو ہے وہ اسکول جاتی ہے اور آپ کے دوست احباب جو ہیں ان سے بھی آپ کا سب تعلق رہتا ہے, تو کیا اس وقت کیا اوپینین ہے عام طور سے ماں باپ کی کہ وہ بچوں کو اسکول بھیجنا چاہتے ہیں یا نہیں بھیجنا چاہتے؟
جیسا کہ سر نے بولا ابھی تو ساری باتیں ٹھیک ہیں, بٹ ایز اے پیرنٹ اگر آپ ان کی جگہ پہ آ کے دیکھو تو میرے دو دوست یا ملنے جلنے والے یا کوئی بھی پیرنٹ وہ سب بھیجنا چاہ رہے ہیں. ہر کوئی اس بات سے پریشان ہے کہ گھر میں پڑھائی اتنے اچھے سے نہیں ہو رہی ہے جتنی اسکول میں ہوتی ہے. ڈیڑھ دو گھنٹے صرف پڑھ رہے ہیں بچے اور اتنے میں بھی وہ بہت دھیان سے نہیں پڑھتے ہیں, تو پیرنٹس چاہتے ہیں کہ اب وہ جائیں, لیکن سارے ہی پیرنٹس ڈرے ہوئے ہیں. اگر اسکول یا ہمارے دیش کے اندر ایسی پالیسیز نکل آئیں جس سے کہ بچوں کو سیف کیسے رکھنا ہے, وہ ان کو کیسے پریونشن کے دائرے میں رکھ کے چل رہے ہیں, اگر کلاس میں 30 بچے ہیں 30 ایک ساتھ نہ جا کے ڈیوائڈ ہو کے جا رہے ہیں, آلٹرنیٹ ڈیز میں جا رہے ہیں, اسکول رسپانسبلٹی لے رہا ہے کہ بچہ ٹھیک رہے گا, باقی تو ہم پیرنٹس بھی ٹرین کر رہے ہیں ان کو کہ آج کے سمے میں بچے نیچے کھیلنے بھی جا رہے ہیں, مل جل بھی رہے ہیں, اینڈ ٹچ وڈ وہ سیف ہیں, کیونکہ ہم دھیان رکھ رہے ہیں. یہی دھیان اسکول میں ٹیچرس کو رکھنا ہے تو ہم بچوں کو بھیج سکتے ہیں, ایسی کوئی دقت نہیں ہے, کیونکہ اب تو کووڈ کا انت ابھی نہیں دکھ رہا نا, تو ہم کب تک رکیں گے, آگے تو بڑھنا ہے سب کو, چاہے وہ پیرنٹ ہو, بزنس ہو, ڈاکٹرس ہو.
لیکن شالنی جی یہ ایک میں آپ سے پوچھوں گی کہ دیکھیے آپ تو اس گروپ سے تعلق رکھتی ہیں پیرنٹس کے جو پڑھے لکھے ہیں اور اکنامیکلی بھی اچھے اسکولوں میں اپنے بچوں کو بھیج سکتے ہیں جہاں پہ بہتر جو ہائیجین کی کنڈیشنز ہیں وہ بہتر ہیں, لیکن جب آپ ان لوگوں سے بات کرتے ہیں مثلاً جو گھروں میں کام کرنے آتی ہیں اور یا وینڈرز ہیں اور جس طرح یہ مائیگرینٹس لیبر تھے جو اتنی بڑی تعداد میں متاثر ہوئے, تو اس طرح کے جو اسکولوں میں بچے جاتے ہیں تو وہاں پہ کیا صورت حال ہے؟
دیکھیے دقت سبھی کے بچوں کو ہے, چاہے وہ بہت اچھے اسکول کے بچے ہوں یا لوور کلاس میں بچوں پیرنٹ کے بچے ہوں, سبھی کے بچے ایک برابر ہیں. تو وہاں پہ کیونکہ بچوں کو بہت نالج نہیں ہے بیکاز پیرنٹس کو بھی نہیں ہے, تو ٹیچرز تو ویل ایجوکیٹڈ ہیں, دے ول مطلب ان کو دیکھنا پڑے گا, بچوں کا دھیان ان کو رکھنا پڑے گا. میں نے پہلے بولا کہ پالیسیز بنانی ہوں گی, اگر پالیسیز ایسی بن جاتی ہیں کہ گورنمنٹ اسکولس یا چھوٹے اسکولس میں ٹیچرز دھیان رکھیں, احتیاط برتیں. آج بھی بہت بار جب میں نکلتی ہوں تو دیکھتی ہوں کہ سڑکوں میں لوگ کھانا بانٹ رہے ہیں, کیمپس لگے ہوئے ہیں, ماسکس بانٹ رہے ہیں, تو وہ جب کیوں بھی بنی ہے نا تو بڑے دائرے میں بنی ہوئی ہے, لوگ اپنا ڈسٹینس مینٹین کر رہے ہیں, سب نے منہ پہ کپڑا لگایا ہوا ہے, طریقے سے چل رہے ہیں. جب ان لوگوں کو یہ ٹریننگ ملی ہوئی ہے جو وہاں پہ کھانا کلیکٹ کر رہے ہیں, تو آئی ایم شیور آپ اسی گروپ کی بات کر رہے ہو, تو انہوں نے ہی تو آگے سکھانا ہے اپنے بچوں کو. ایک چین ہے نا, وہ چلے گی جب ان کو بتایا جائے گا کہ ایسے ہی چلنا ہے.
تو پالیسی کی بات آئی ہے تو ڈاکٹر ایک بار پھر ڈاکٹر انیل کمار گپتا صاحب کے پاس. ڈاکٹر صاحب آپ نے ابھی کہا کہ آپ کا نیشنل لیول پہ تو پالیسیز ہیں ہی لیکن انٹرنیشنل لیول پر بھی ہیں, تو چلیے دور نہیں جاتے, مطلب میں امریکہ کی بات نہیں کروں گی, ظاہر ہے یہاں بہت ساری چیزیں مختلف ہیں جنوبی ایشیا سے, پاکستان کی بات کرتے ہیں تو پاکستان کے صوبے کے پی کے کا جو ایک میں پڑھ رہی تھی تو اس میں بہت بڑی تعداد میں تو اسکول ایسے ہیں جہاں پانی ہی نہیں ہے, تو وہاں ہم بچوں سے کیسے توقع رکھ سکتے ہیں کہ وہ ہاتھ دھوئیں گے جو کہ ایک بنیادی چیز ہے کووڈ سے بچنے کی؟ تو اس طرح کی صورتحال مجھے یقین ہے انڈیا میں بھی جو دور دراز علاقے ہیں وہاں پر ہوگی.
یہ بالکل امپورٹنٹ بات کو آپ نے ٹچ کیا ہے, کیونکہ جسے آپ نے پاکستان کا ایگزامپل لیا, ہندوستان میں بھی ایسے ایگزامپل ہے, تھوڑی سی سچویشن الگ یہ ہے کہ ہندوستان میں جو اچھی حالات ہے وہ تعداد کے اسکول بھی کافی اچھے نمبر میں ہیں, لیکن ہمارے یہاں بھی کئی ایسے علاقے ہیں جو بیکورڈ ہیں, جو دور کے علاقے ہیں, کچھ نارتھ ایسٹ کے علاقے ہیں, کچھ کوسٹل ایریاز کے ہیں, کچھ کشمیر کی جگہ ہیں, تو وہ اس طرح کی چیزیں ضرور ہیں. کچھ گاؤں میں ابھی انٹرنیٹ کی پرابلم جیسے ہوتی ہے, تو اگر وہ وہاں پر الیکٹریسٹی نہیں پہنچ پاتی ہے تو آپ کے ٹیلی فون چارج نہیں ہوں گے, لیپ ٹاپ چارج نہیں ہوں گے, تو وہ اس طرح کی دقتیں یہاں کافی زیادہ آئیں اس پیریڈ میں جب ہم آن لائن پڑھائی کی بات کر رہے تھے, اور کئی بار تو بڑے بڑے پروگرام میں بھی اس طرح کے چھوٹے چھوٹے سے دخل آتے تھے, ان کو بھی ہینڈل کرنا پڑا. تو اسی لیے وہاں پر لوگ یہ چاہتے ہیں کہ اسکول چالو ہو جائے تو بچے اسکول میں جا کے پڑھائی کر سکیں, لیکن جیسے ابھی شالنی جی بھی کہہ رہی تھی اور اس کے پہلے प्रोफेसर जुगल किशोर साहब ने भी जो कुछ बातें कही, तो उनमें उनमें भी मैं थोड़ी सी रोशनी डालना चाहूंगा, और वो पॉलिसी एंगल से ही, कि अभी क्या हो रहा है कि एज पेरेंट्स जितने लोग हैं बच्चों के, वो टीचर्स की तरफ और स्कूल मैनेजमेंट की तरफ देख रहे हैं कि स्कूल मैनेजमेंट और टीचर्स जो है वो सारा ख्याल रखें। लेकिन अभी ये देखिए कि जो पढ़ाई है, जो टीचर्स के ऊपर जो एक प्रेशर होगा वो कोर्स कंप्लीट करने का, जो आपका सिलेबस है उसको कंप्लीट करने का वो प्रेशर होता है, एक एक बच्चे की उसके बिहेवियर का, उसके उठने बैठने का, शायद टीचर इतना नहीं कर सकता है क्योंकि उसका ध्यान पढ़ाने पे होगा, वो तो वो भी बात देखनी है कि टीचर के ऊपर कितना लोड आप एक्सपेक्ट कर सकते हैं। दूसरी बात, एक छोटी सी रिस्क है, प्रोफेसर जुगल किशोर साहब ने अभी थोड़ा सा बात को टच किया था, उन्होंने कहा कि जो जो बच्चे हैं उस पे सीरियस इलनेस की रिस्क नहीं है, बिल्कुल ये मानी बात है और इस ये काफी प्रूफ भी हुई है। अब लेकिन क्या है कि बच्चे एसिम्प्टोमेटिक इन्फेक्शन ले सकते हैं, वो कैरियर बन सकते हैं, और बच्चे जब वापस घर पे जाते हैं तो घर पे हो सकता है कि उनके घर पे कुछ लोग हों जो कोमोर्बिड हों, या कुछ लोग हों जो ज्यादा उम्र के लोग हैं जो एक्चुअली हम वल्नरेबल ग्रुप में मान सकते हैं, तो वो थोड़ी से रिस्क में हमको ये एडिशनल एहतियात शामिल करना होगा कि वापस जब स्कूल बच्चे जाएंगे, स्कूल से वापस लौटेंगे, और वो अगर इन्फेक्शन कैरी कर रहे हैं, बच्चों को कुछ नहीं हो रहा है लेकिन वो अपने परिवार में जब जा रहे हैं, या स्कूल में टीचर्स भी कई होते हैं जो ज्यादा उम्र के होते हैं, हो सकता है 50 साल के हों, 55 साल के हों, और भी जो वहां पे जो कामदार होते हैं, गार्ड्स होते हैं, माली होते हैं स्कूल में, हो सकता है उनको भी कोई कोमॉर्बिडिटी के इशू हो। तो जब स्कूल की बात करते हैं तो बच्चे एक बहुत बड़ा वो है, लेकिन बच्चों के अलावा भी जो लोग हैं परिवार के और जो लोग जो सर्विसेज देते हैं उनके बारे में भी सोचना जरूरी है।
तो आपने हमें बड़ी मेहरबानी आपकी कि आपने हमें कुछ रिकॉर्डिंग्स भेजी हैं, थोड़ा सा अगर आप हमें तारुफ करवाएं उन लोगों का, उसके बाद मैं रिकॉर्डिंग सुनवाऊंगी।
वो मेरी फ्रेंड्स हैं, नोन है, नेबरहुड में थे, और वो मतलब वो अपना व्यूज दे रहे हैं, वो नहीं तैयार है अपने बच्चों को भेजने के लिए।
तो हम सुनवाते हैं आपने सुनने वालों को, ये दो माओं के ख्याल हैं।
मेरा नाम मीना शर्मा है, मेरा बेटा शाश्वत जिंदल खेतान पब्लिक स्कूल नोएडा में पढ़ता है, और कोई वैक्सीनेशन ना आने के कारण मेरी बिल्कुल भी सहमति नहीं है कि मैं अपने बच्चे को स्कूल में भेजकर कक्षा अटेंड करवाऊं। मैं ऑनलाइन क्लासेस से काफ़ी प्रभावित और सेटिस्फाइड हूं, और जब तक इसकी कोई वैक्सीनेशन नहीं आ जाती मैं अपने बेटे को विद्यालय में भेजना सेफ नहीं समझती हूं।
चित्रा रौतेला बोल रही हूं, मेरे दो बच्चे प्रेसिडियम स्कूल में पढ़ते हैं, एक 8th क्लास में और 4th क्लास में। अब बड़ी समस्या ये है कि इतने समय से बच्चे ऑनलाइन क्लासेस कर रहे हैं तो उनमें पढ़ाई हो तो रही है लेकिन ढंग से नहीं हो पा रही है, बच्चे हर समय लैपटॉप में पढ़ नहीं पाते ढंग से। वैसे तो हम चाहते हैं कि स्कूल खुलें, लेकिन खुलें तो इस कोरोना में हमें स्कूल में भेजने में भी सुरक्षित नहीं समझ रहे हम, क्योंकि इस अभी तक तो इसकी कोई वैक्सीन या दवाई नहीं मिली है। तो अगर स्कूल खुलें तो पूरी सुरक्षा के साथ खुलें, हमारे बच्चों को कोई नुकसान नहीं होगा, और अगर ये सुरक्षा नहीं मिलती है तो फिर हम ऑनलाइन क्लासेस ही प्रेफर करेंगे।
अब हम जब बात करते हैं खानदानों की और खासतौर पर बच्चों के हवाले से, तो डॉक्टर किशोर, यहाँ अमेरिका में एक बात जो सामने आई वो ये थी कि बीमारी की वजह से स्कूल तो बंद कर दिए गए डर के मारे, लेकिन ये कि लाखों बच्चे ऐसे हैं जिनमें जो मेजॉरिटी है वो इमिग्रेंट पेरेंट्स के बच्चे हैं जिनके साथ ये मसला है कि उन्हें मुफ्त लंच या मुफ्त ब्रेकफास्ट स्कूल से मिलता था। जब स्कूल बंद हुए तो जाहिर बंद हो गया खाना भी, और बहुत सारे बच्चे ऐसे थे जो दिन में सिर्फ एक वक्त खाना खाते थे। लोगों को हैरत होगी लेकिन कि अमेरिका में ऐसा होता है, लेकिन दुनिया भर में ऐसा होता है, जो असरात होते हैं इक्तसादी वैसे ही होते हैं। तो इंडिया में भी बच्चों को दोपहर का खाना मुझे जहाँ तक इल्म दिया जाता है स्कूलों में, यहाँ तो ये तदारुक किया गया कि उन्होंने फिर जो ग्रॉसरी स्टोर थे और रेस्टोरेंट थे वहाँ पे कार्ड्स बच्चों को दे दिए कि आप वहाँ जाके खाना ले सकते हैं या किसी एक सेंटर से ले सकते हैं। तो इंडिया में अब इसका क्या इंतजाम किया गया?
ये बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है, मैं इसको थोड़ा सा और एलोब्रेट करके कोशिश करूंगा बताने की कि जब बच्चों को लॉकडाउन में रहना पड़ा अपने घर में, तो उसमें ये देखा गया कि जो चाइल्ड सेक्सुअल अब्यूज है वो बढ़ गया, कई गुना बढ़ गया। और ये बड़ा इंटरेस्टिंग है कि ज्यादातर जो सेक्सुअल अब्यूज होता है बच्चे का वो घर के रिलेटिव्स या मेंबर्स से ज्यादा होता है एज कम्पेयर टू आउटसाइड. फिर चाइल्ड लेबर, आपको पता ही होगा कि चाइल्ड लेबर भी इंक्रीज होता है जब बच्चा घर में रहता है तो वो घर के सारे काम करता है. अगर वो स्कूल जाता है तो स्कूल में पढ़ता है, लेकिन अब वो घर में रह रहा है तो सारे काम कर रहा है. और पर्टिकुलरली जो फीमेल बच्चे होती है उसमें बहुत ज्यादा चांसेस होते हैं कि वो सारा काम करे. तीसरा ये कि जो डोमेस्टिक वायलेंस है वो बढ़ गया. कुछ लोगों का मानना है कि नहीं कम हुआ है, परिवार साथ रहने लगे तो, लेकिन ऐसा नहीं है. डोमेस्टिक वायलेंस के केसेस कई कई गुना बढ़ गए. और एक टर्मोइल हुआ है उसमें जो लॉन्ग टर्म इफेक्ट होते हैं बच्चे के ऊपर उसका अंदाजा लगाना मुझे लगता है कि कोरोना के जो इम्पैक्ट है उससे कहीं ज्यादा होगा. तो जैसा अनिल जी ने कहा कि उसका रिस्क, जैसे कोमॉर्बिड हमारे बड़े बूढ़े हैं घर में, अगर वो इन्फेक्शन लेके आते हैं तो हो जाएगा डेफिनेटली. लेकिन हमें इस तरह के रिस्क भी देखने होंगे कि क्या ऐसा तो नहीं हो रहा कि हमारे, एक एग्जांपल है कि एक ही दिन में करीब 70,000 कॉल्स एक 10 दिन के अंदर में रिकॉर्ड किए गए जब लॉकडाउन शुरू हुआ.
किस बारे में थी कॉल्स किशोर जी?
चाइल्ड कॉल्ड यू नो दैट एजेंसी दैट दे आर इन यू नो ट्रबल कंडीशन एंड प्लीज हेल्प अस. तो कुछ कॉल सेंटर होते हैं जो हेल्पलाइन होते हैं, उसका डाटा मैं बता रहा हूँ. इस तरह के डाटा हमारे पास अवेलेबल है. एनीवे, कहने का मतलब ये कि जो इंस्टेंस ऑफ सेक्सुअल अब्यूज ऑफ चिल्ड्रन आर इंक्रीज मैनीफोल्ड थ्रू आउट द वर्ल्ड, नॉट ओनली इन इंडिया बट अदर पार्ट ऑफ द वर्ल्ड. तो ये एक बहुत ही बड़ा मुद्दा है, इसको ऐसे ही नहीं छोड़ देना चाहिए. इसलिए भी स्कूल बहुत जरूरी होता है. स्कूल के अंदर जैसा आपने कहा मिड डे मील हमारा एक बहुत बड़ा प्रोग्राम है, वर्ल्ड का एक बड़ा प्रोग्राम इंडिया में चलता है. उसके थ्रू 1/3 और 1/2 ऑफ द प्रोटीन एंड 1/3 ऑफ कैलोरीज हमारी बच्चे को मिलती है. और ये देखा गया कि वो सिर्फ ना केवल खुद खाता है लेकिन अपने परिवार के और दूसरे बच्चों और मेंबर्स या मेंबर्स को भी शेयर करता है. तो उसके थ्रू काफी चीजें उसको खाना मिल जाता है. स्किल ट्रेनिंग होती है, बिहेवियर और मेंटल हेल्थ के जो सर्विसेज होती है स्कूल के थ्रू होती है, वो बंद हो गए तो उसमें बहुत बड़ी प्रॉब्लम हुई. ये एक वेल प्रूवन फैक्ट है पूरे वर्ल्ड के अंदर कि अगर स्कूल में जाता है बच्चा तो उसकी एकेडमिक, सोशल, इमोशनल एंड फिजिकल हेल्थ में बहुत फर्क पड़ता है. जब वो बड़े बच्चों छोटे बच्चों से इंटरेक्शन करता है तो उसके अंदर लैंग्वेज का, कम्युनिकेशन का और सोशल इंटरपर्सनल जो उसके स्किल्स होते हैं वो इम्प्रूव होते हैं. अगर वो घर में ही बैठा रहे तो एक सोशल आइसोलेशन होता है, वो उसके बाद में एंजाइटी और डिप्रेशन का शिकार होता है. तो ये कहना चाहिए अगर मैं इसकी इनुमरेट करना शुरू करूं तो मुझे लगेगा कि कोरोना वहां पर बहुत छोटा पड़ जाता है और उससे डेथ भी बहुत छोटी पड़ जाती है. एक लाइफ लॉन्ग जो एक डिसेबिलिटी और एक ट्रबल जो उस लाइफ में होने वाली है उस पे अगर हम ध्यान दें तो मुझे लगता है कि स्कूल का खुलना बहुत जरूरी है, उसको स्ट्रीमलाइन बहुत जरूरी है. ये जो लोगों की एक एक फियर है कि वहां पर उनको ज्यादा इन्फेक्शन हो जाएगा या हमारे बच्चों को क्या होगा, ये ज्यादातर मिथ है. जो इसलिए है क्योंकि उनको डिजीज का जो कंसेप्ट है या डिजीज का ट्रांसमिशन का कंसेप्ट है वो कहीं ना कहीं कमजोर है और उसको समझाने की जरूरत है. स्कूल का क्या रोल है और माँ बाप का क्या रोल है, गवर्नमेंट का क्या रोल है, ये सब अलग अलग रोल्स अदा करने की जरूरत है आज. जी
तो शालिनी जी, जो बात किशोर जी से हुई मैं चाहूंगी कि और ज्यादा उसी पर आगे हम बात करें. खास तौर पे जाहिर है कि आप काम करती हैं, आपका बहुत सारी लोगों से मिलना जुलना होगा, खानदानों से भी, फिर अपने इलाके में, नेबरहुड में. तो ये तो एक रियलिटी है कि डोमेस्टिक वायलेंस जो है दुनिया भर में बढ़ा है और बहुत ज्यादा बढ़ा है. तो आपको लगता है कि इंडिया में भी ऐसा ही हुआ है और डोमेस्टिक वायलेंस में इजाफा हुआ है?
बढ़ा है नो डाउट, जैसा कि सर ने बहुत सारे एग्जांपल्स कोट किए, बढ़ा है, न्यूज में भी है. लेकिन वही बात आ जाती है कि पेरेंट्स को जब डिसाइड करना होता है ना तो वो तो सिर्फ अपना बच्चा देखते हैं, उनको कुछ दीन दुनिया समझ नहीं आती. तो उनको सिर्फ इतना चाहिए कि अभी उनको प्रिकॉशंस मिले, उनको स्कूल बोले कि हाँ भाई हम ध्यान रखेंगे और वो अपने बच्चे को भेजने के लिए तैयार है. मैं जितनों से भी मिलती हूँ सबका सिर्फ इतना ही कहना है कि वो अपने बच्चे को भेज सकते हैं अगर एहतियात स्कूल वाले भी उतनी ही बरतें जितने कि पेरेंट्स घर पे कर रहे हैं. और बाकी वायलेंस की बात है तो डेफिनेटली घर में चार लोग रह रहे हैं जहाँ पे पहले दो रहते थे, आज वहाँ पे छह छह लोग एक साथ हैं, तो प्रॉब्लम्स तो है ही. आज जब सब लॉक होके घर में बैठे हैं, सबके अंदर फ्रस्ट्रेशन है, किसी के अंदर काम की है, बच्चों के अंदर है कि वो खेलने नहीं जा रहे, दोस्तों से नहीं मिल रहे, अलग अलग लेवल पे अलग अलग प्रॉब्लम्स हैं. सो निकलना तो पड़ेगा आप सबको.
दुनिया भर में रिसर्च है. अभी मैं शालिनी जी आपसे पूछूंगी कि कहते हैं कि अफ्रीका में बहुत इस पे काम हुआ और वो कहते हैं कि अगर बच्चा दो तीन हफ्ते स्कूल ना जाए, शुरू में तो उसे बुरा लगता है लेकिन फिर उसकी विलिंगनेस ही खत्म हो जाती है, फिर वो जाना ही नहीं चाहता है स्कूल क्योंकि उसका दिल लग जाता है दूसरी चीजों में. तो आपका भी ऑब्जर्वेशन यही है?
मेरी बेटी के साथ तो यही है.
अच्छा.
मैं जो पर्सनली फील कर रही हूँ वो तो जाना ही नहीं चाहती. वो कहती और कोरोना बढ़े और स्कूल बंद रहे तो वो तो नहीं जाना चाहती. और उसका ही बिहेवियर देख के मैं बहुत डरती हूँ. मुझे लगता है जल्दी खोले कि इसको आदत ना पड़े.
तो किस तरह मैनेज करते हैं आप लोग जो इंटरनेट पे, मतलब बच्ची आपकी पढ़ती होगी तो आपको लगता है किस तरह दिल लगाते हैं?
खास पढ़ाई ना कुछ खास पढ़ाई नहीं होती है. मेरी बेटी डीपीएस में है एंड सुबह 8:30 बजे क्लास शुरू होती है और 10 बजे खत्म हो जाती है. तो आप अंदाज लगा सकते हैं कि 8 सब्जेक्ट्स 1.5 घंटे में टीचर्स क्या ही कवर कर रहे हैं. सो इसीलिए स्कूल्स पे रिस्पॉन्सिबिलिटी आनी चाहिए और मुझे लगता है बच्चों की पढ़ाई के लिए, उनके फिजिकल एक्सरसाइज के लिए उनको बाहर निकलते हैं तो वो एक्टिव रहते हैं. मार्च से लेके जुलाई तक तो वो घर में बिल्कुल लॉक थे सारे ही बच्चे. अब हमने नीचे भेजना और सारी चीजें शुरू करी हैं एंड टचवुड एवरीथिंग इज सेफ, सब चल रहा है क्योंकि हम सब लोग ध्यान दे रहे हैं जितना दे सकते हैं.
अच्छा, थोड़ा सा मैं आपके काम के लिहाज से भी पूछूंगी कि पब्लिकेशंस का आपका काम है और जाहिर है कि जब इदारे ही बंद है तो आपके यहाँ तो खैर चलिए फिर हायर लेवल पे है ये काम, लेकिन जैसे दूसरे जो पब्लिशर्स हैं, मसलन जो किताबें स्कूलों की और कॉलेजों की जो छापते हैं, जो करिकुलम है उसकी, तो उनकी सूरत हाल क्या है? क्या गवर्नमेंट उन्हें पे कर रही है अब उन किताबों के लिए जो वो ऑलरेडी पब्लिश कर चुके हैं या उनके पास डंप पड़ी हुई है चीजें सारी?
डिपेंड करता है कौन सा पब्लिशर किस लेवल पे काम कर रहा है. अगर वो एक प्राइवेट बॉडी है और प्राइवेट स्कूल्स ही डील करता है, उसकी किताबें डंप पड़ी हैं, वो नहीं बेच पाए, तो उसमें तो गवर्नमेंट कुछ नहीं कर सकती. और ऐसा नहीं है कि उनकी किताबें नहीं बिकेंगी, साल के आखिरी में जाएंगे और मतलब बहुत ही कम कॉस्टिंग में निकलेगा. बिजनेसेस इफेक्ट हुए और सिर्फ पब्लिकेशन नहीं, सारी ही इंडस्ट्रीज. हम लोगों को ज्यादा दिक्कत इसलिए हुई बिकॉज हमारी किताबें या जर्नल्स पढ़ने वाले बच्चे और स्टूडेंट्स ही थे, उन्हीं का कॉलेज आना बंद हो गया. तो जब वो लाइब्रेरी में नहीं आएंगे तो ना तो किताबें खरीदी जाएंगी ना जर्नल्स खरीदे जाएंगे, तो इंडस्ट्रीज इफेक्ट हुई. उधर बच्चों को भी मटेरियल नहीं मिल रहा. सो दोनों तरफ ही है इसके साइड इफेक्ट्स. बट अगर अगेन एज अ पेरेंट आप सोचोगे तो दे डोंट केयर, दे जस्ट केयर कि हमारा बच्चा सेफ है. हम एज अ पब्लिशर, चाहे बुक पब्लिशर्स हों चाहे जर्नल पब्लिशर्स हों, सभी को नुकसान हुआ है, इसमें कोई डाउट नहीं है. इसमें कि गवर्नमेंट का कोई बहुत कॉन्ट्रीब्यूशन नहीं है और वो कर भी नहीं सकते.
ये वॉइस ऑफ अमेरिका है. आप हमारे प्रोग्राम फेसबुक पर भी बराह रास्त देख सकते हैं. पता है facebook.com/voaurdu.
दोबारा वापस आते हैं डॉक्टर अनिल आपकी तरफ. इकोनॉमी की बात अगर आती है, ज़ाहिर है पॉलिसी में इकोनॉमी तो बहुत अहम हिस्सा रखती है, तो क्या इस तरह के कोई पैकेजेस वगैरह थे इकोनॉमी के जो उन लोगों को दिए गए जिनका कारोबार बिल्कुल ही ठप हो गया रह गया? मतलब एक तो मुझे पता है कि जो लो इनकम ग्रुप्स हैं उनको भी दिए गए थे, लेकिन जो बिजनेस है उनके लिए क्या पॉलिसी थी?
हिंदुस्तान में एक बहुत बड़ा स्ट्रेटजिक इनिशिएटिव लिया गया इस चीज को लेकर के. जो इकोनॉमी है वो पूरी तरीके से इसमें डिसरप्शन हुआ है. डिसरप्शन भी हुआ है और थोड़ा सा ट्रांजिशन भी हुआ है. अभी जैसे शालिनी जी जो कह रही थी, भले वो नैरो सेक्टर है लेकिन उसमें भी अगर मैं बोलूं तो अभी जो प्रिंटेड बुक्स हैं उनकी बजाय या प्रिंटेड जर्नल्स हैं उनकी बजाय जो ई बुक्स और ई जर्नल की तरफ शिफ्टिंग काफी हो रही है. लेकिन जो आपका प्रश्न था, आपका जो सवाल था जो पैकेज के लिए, तो हिंदुस्तान ने अभी जो अपनी इकोनॉमी के जो की सेक्टर्स हैं उनको दोबारा से पहिए पे खड़ा करने के लिए एक आत्मनिर्भर भारत बोलकर के ऐसा पैकेज, बहुत बड़ा पैकेज है वो, और जिसके तहत वो हर मिनिस्ट्री को अपना प्लान सबमिट करने के लिए बोला गया है कि आप अपने सेक्टर को कैसे दोबारा उठाएंगे, उसमें क्या क्या जरूरतें हैं, चाहे उसमें चाहे वो इंटरनेशनल कोलेबरेशन करने पड़े या हिंदुस्तान के अंदर ही उसमें कोई रिसर्च करने की जरूरत है, या कैसे स्टेक होल्डर्स को आप उसमें लेके आएंगे और क्या अल्टरनेटिव्स हो सकते हैं. क्योंकि इसमें ये भी हो रहा है कि बहुत सारे सेक्टर में बिल्कुल वही सूरत हाल नहीं होगी, बहुत बदलाव हो जाएगा. जैसे मुझे याद है मैं गुजरात के कुछ जगहों में था वो लॉकडाउन के दौरान, और हम लोग इंडस्ट्री के लोगों से बात कर रहे थे, तो वहां पर भी उन लोगों की यही बात थी कि माल हमारा बना पड़ा है लेकिन माल का हमारा कोई खरीदार नहीं है, और हमें पता है कि अभी थोड़े समय तक कोई खरीदार नहीं होगा क्योंकि कस्टमर के पास पैसे नहीं है। अभी दिल्ली में हमने बहुत नॉर्मलसी करने की कोशिश कर दी है, आज से मेट्रो भी हमारी जो सर्विसेज है वो बहाल कर दी गई, लेकिन ये सब कुछ खोलने के बाद भी बहुत सारे ऐसे शॉप्स हैं जो खुद नहीं खोलना चाहते क्योंकि उनका जो पर डे खर्चा है वो बहुत ज्यादा है और उन्हें कस्टमर आने की उम्मीद नहीं है। तो इस तरह की जो जो हालात है वो बहुत सारे सेक्टर्स में है, जैसे टूरिज्म सेक्टर है उसमें उसमें वो पूरा बैठ गया है, उसके अंदर अभी लोगों को पता है कि स्कूल्स वगैरह धीरे धीरे खोलने की बात हो रही है लेकिन टूरिज्म सेक्टर को वापस फैक्ट्री में लाने में बहुत समय लगेगा। अभी जो इसेंशियल सर्विस है वहां पे धीरे धीरे पटरी पे गाड़ी लाने की कोशिश कर रहे हैं लोग, और इसके बाद फिर लग्जरी और एंटरटेनमेंट, इसके बाद शायद उसका नंबर आने में थोड़ा और ज्यादा वक्त लगेगा। और हम दूसरे मुल्कों से भी सीख रहे हैं और आपस में भी चर्चाएं होती हैं ये जो डिफरेंट कंट्रीज के बीच में, और इस तरह से सीन कैसे इसको हम कर सकते हैं। और जो हमारे स्टेट गवर्नमेंट्स हैं वो भी अपने लेवल पे इस तरह के इनिशिएटिव्स कर रहे हैं कि कैसे हम अपने कमर्स और ट्रेड को वापस हमको लाना है पटरी पे, और उसके लिए क्या अल्टरनेटिव्स को करना पड़ेगा।
तो जहाँ तक सीखने की बात है कि दूसरे मुल्कों से, पूरी दुनिया ही सीख रही है एक दूसरे से, तो आप बताइए कि जब आप देखते हैं दूसरे मुल्कों को जिनकी कंडीशंस इंडिया जैसी हो, तो कौन सा मुल्क है जिससे लेसन सीखने की जरूरत है भारत को?
देखिए अगर जैसे स्कूलों की बात करें तो मैं चर्चा करूंगा कि अभी हम ऑस्ट्रेलिया और न्यूजीलैंड वगैरह में देखें कैसे उन्होंने जब लॉकडाउन का पीरियड में जब ऑनलाइन पढ़ाई हो रही थी वहां पे उन्होंने स्कूल को पार्शियली उसमें थोड़ी सी खोलने की कोशिश करी, खोल दिए कि वो बच्चे जो ऑनलाइन पढ़ाई नहीं कर सकते हैं वो स्कूल आ सकते थे, और उन्होंने वहां स्कूल में उनके लिए इंतजाम होते थे और वो वहीं से ऑनलाइन पढ़ाई होती थी। लेकिन उसमें एक सवाल उठता है कि जो पॉपुलेशन डेंसिटी है वो हिंदुस्तान पाकिस्तान की जो पॉपुलेशन डेंसिटी है वो जो बाकी मुल्क हैं वहां पे जो कंडीशन है वो काफी डिफरेंट है। वो बातें तो है कि हमें वहां पे सीखना है लेकिन एज इट इज हम उसको कॉपी नहीं कर सकते, हमें उसके साथ और भी चीजें सीखनी होंगी। जो प्रोफेसर जुगल किशोर साहब भी बोल रहे थे कि इन्फेक्शन तो चांसेस हैं लेकिन हमें रिस्क के साथ अभी जीना पड़ेगा और रिस्क के साथ हमें काम करना सीखना पड़ेगा और थोड़ा सा क्या करना चाहिए उस पर ध्यान देना है। जापान का एग्जाम्पल लेंगे कि जापान ने ये जानते हुए कि अभी इन्फेक्शन बढ़ रहे हैं बट इसके बाद भी जो इकोनॉमी को पटरी पे लाने के लिए उन्होंने कहा कि भी ठीक है नाउ वी हैव टू लिव विद रिस्क, अभी हम इसके साथ आगे बढ़ेंगे, हम सब कुछ धीरे धीरे खोल रहे हैं और जो लोग बीमार होंगे जिनको इन्फेक्शन होता है तो उनके लिए पूरे इंतजाम होंगे कि उनको अच्छे से अच्छी हेल्थ फैसिलिटी मुहैया कराई जाए। तो उसी डायरेक्शन पे आगे देखें तो हिंदुस्तान में भी कोशिश की जा रही है। ये सच है कि सारे सारे जो हमारे स्टेट हैं या सारे जो रीजन्स हैं वो एक समान नहीं है, कुछ जगह व्यवस्थाएं थोड़ा अच्छी हैं, कुछ जगह थोड़ा सा कुछ कमियां होंगी जहां पे सुधार करने की जरूरत है। दिल्ली के अंदर काफी अच्छी स्थिति हो गई है, टेस्ट भी बहुत आसानी से हो जाते हैं और इसके बाद अगर इलाज पे भी अभी लोगों को हॉस्पिटल ज्यादा जाना नहीं पड़ता है अगर बहुत सीरियस ना हो, काफी लोग घर पे रह करके होम आइसोलेशन पे ठीक हो जा रहे हैं।
तो यही सवाल डॉक्टर किशोर आपसे कि एक एपिडेमिक के बारे में क्या लेसन लर्न किए इंडिया ने आइंदा इससे ज्यादा बेहतर तरीके से निमटने के लिए?
अगर हम लेसन की बात करें कि क्या लेसन हमें सीखना है, अनिल जी को मालूम है कि कितना इंटरेक्शन चाहिए, कितना कोलैबोरेशन चाहिए, लेकिन हम पिछले अगर पैंडेमिक देखें तो मैं पिछले 2000 साल तक के पैंडेमिक को स्टडी करने के बाद में ऐसा कुछ महसूस होता है कि ज्यादा जो हमारे प्रिवेंटिव मेजर्स हैं वो ज्यादातर एक जैसे ही है। पहले भी वही था कि लोगों को हमें अलग करना है, घरों में रखना है और ज्यादा इंटरेक्शन नहीं होना चाहिए। जो सस्पेक्टेड एजेंट होता था या तो वो एनिमल्स हैं या फिर बर्ड्स हैं उनको मार देते थे, तो कहना चाहिए जो हमारा एवियन फ्लू है उसके अंदर हुए हुआ या इबोला के अंदर अगर हम देखें तो ये जो मल्टीपल पेंडेमिक्स होते रहे हैं उनसे यही सीखने को मिलता है कि हमारे को पेंडेमिक की अंडरस्टैंडिंग बढ़ाने की जरूरत है, हमारे को उसके साथ कैसे जीना चाहिए, जैसे अनिल जी ने कहा कि जैसे जापान है वहां पर डिजास्टर इतने आते रहते हैं लेकिन उसके बावजूद भी वो कंटिन्यूसली अपना प्रोग्रेस करते हैं, तो हमारे पेंडेमिक और बढ़ेंगे क्योंकि क्लाइमेट चेंज हो रहा है, पॉपुलेशन बढ़ रही है, तो बहुत सारे ऐसे पेंडेमिक हमारे को शायद फ्यूचर में और दिखने को मिले, तो उस केस में जनता या हमारी पूरी गवर्नमेंट या पूरा सिस्टम उसको गियर अप करने की जरूरत है कि जो भी लेसन ये सिखा रहा है हमें तो उसको हम अपने हैबिट के अंदर लेके आए और उसके साथ में जीना शुरू करें। स्कूल की अगर हम बात करें कि क्या चेंजेस जरूरत है स्कूल के अंदर, तो स्कूल एक सोशल कैपिटल होता है, किसी भी समाज का एक एक जान होती है, वो ना केवल स्टूडेंट को प्रोग्रेस देता है या उसको इन्वायरमेंट देता है लर्न करने के लिए, लेकिन टीचर्स के लिए भी बहुत अच्छी जगह होती है जहाँ पर उसको जॉब मिलती है और वो अपने आप को और ग्रो कर पाता है, उसके साथ में इतनी सारी स्टाफ उसके साथ जुड़े होते हैं जिनको जॉब मिलती है, उससे उनके घर परिवार चलते हैं, पेरेंट्स जो है या गार्जियन हैं उनको एक बहुत बड़ी राहत मिलती है जब उनके बच्चे स्कूल चले जाते हैं तो वो अपना काम ठीक से कर पाते हैं, तो एक सिस्टम बनता है और एक सोशल कैपिटल के अंदर बहुत बड़ा रोल अदा करता है, तो स्कूल को अपना इस वक्त में एक रोल अदा करने की जरूरत है, उसको अपने आप को गियर अप करने की जरूरत है कि उसे कैसे हेल्दी रहना है और उसे अपने स्कूल का हेल्दी इन्वायरमेंट कैसे करना है, जो हम सदियों से कहते आए हैं कि एक स्कूल हेल्थ की जरूरत है या एक हेल्दी स्कूल की जरूरत है, उसको सभी स्कूलों के अपनाने की जरूरत है, जो बहुत ही अच्छे लेवल पे अभी शुरू हो सकता है, जो बच्चे के अंदर बिहेवियर चेंज आते हैं या बिहेवियर उसके अंदर पनपते हैं वो स्कूल के अंदर पनपते हैं कि वो कैसे क्लीन रहेगा, कैसे वो एक दूसरे से अदब से बात करेगा, कैसे अपनी हाइजीन रखेगा, स्कूल इन चीजों को बढ़ावा दे सकता है। आज का एक वक्त है जब उसको ये रोल अपना पूरा समझना चाहिए और पूरा का पूरा गियर अप होना चाहिए, जो परिवार है या जो पेरेंट्स हैं उनको बहुत इसमें अपना रोल अदा करना है। जैसे मैं एक एग्जांपल दूंगा कि वैक्सीन लगवाना लोगों के अपने पेरेंट्स के लिए बड़ी प्रॉब्लम है क्योंकि उसके बाद में बुखार हो जाता है, बच्चा चीखता है, अभी जब उन्हें समझ में आने लगा कि नहीं वैक्सीन से बहुत सारी बीमारियां बच जाती है, जो जिसका वैक्सीन लगता है उसकी वो बीमारी नहीं होती, छोटा सा दर्द होता है, छोटी सी परेशानी होती है, उसको अगर हम सहले आज तो फ्यूचर के लिए हमेशा के लिए ठीक हो सकता है। वही मैं कहना चाहता हूँ कि आज अगर वो ये कह रहे कि नहीं हम अपने बच्चे को नहीं भेजेंगे तो वो गलत सोच है, उसको समझ में नहीं है कि वो एजुकेशन का वैल्यू क्या है, एजुकेशन से उनको क्या मिल सकता है।
एक बात यहाँ पूछूंगी आपसे, हमें शुरू में बल्कि वो करनी चाहिए थी, आपसे पहले मेरी बात हो रही थी तो आपने कहा कि हमें ये फर्क समझने की जरूरत है कि लॉकडाउन में और कंटेनमेंट में क्या फर्क है। ये इसलिए भी अहम है बात करना कि भारत में जो शुरू में लॉकडाउन किया गया बहुत ही उसकी वजह से एक क्योस भी हुआ, बहुत ज्यादा एंगर भी था लोगों में, खासतौर पे जो माइग्रेंट लेबर्स थे उनके अंदर। तो थोड़ा सा अगर आप हमारे सुनने वालों को बताएं कि आपका क्या मतलब है जो आप कहते हैं कि लॉकडाउन में और कंटेनमेंट में फर्क है।
हाँ, लॉकडाउन में जो अभी देखा गया वहां पर सब कुछ बंद कर दिया गया, सारे जो भी बिजनेस और दुकानें थी, जो मोबिलिटी थी लोगों की वो बिल्कुल क्लोज कर दिया गया और उसको क्लोज करने के लिए एक पुलिस का इस्तेमाल किया गया, एक फोर्स का इस्तेमाल किया गया, और उसका रीजन ये था कि मान के चल रहे थे कि लोग वायलेट करेंगे और उस वायलेशन को रोकने के लिए हमें इस तरह से करना है। उसमें क्या हुआ कि जो एक जिंदगी चलती है, जिंदगी हमारे खाने पीने से और सब चीजों से जो चलती है वो बिल्कुल बंद हो गया, उसको प्रोवाइड करने के लिए आप देखिए कि कितना मुश्किल हुआ। ये सिर्फ इंडिया में नहीं, आप पाकिस्तान देख ले या फिर आसपास के जितने देश हैं, नेपाल देख ले, वहां पर सब इस तरह के ही लॉकडाउन का प्रयोग किया गया। ये बाहर भी हुआ लेकिन वहां पर लॉकडाउन में जो फोर्स प्ले करती है वो थोड़ा सा ह्यूमन होती है, हमारे यहाँ पर इनह्यूमन तरीके से फोर्स प्ले करती है, लेकिन दैट इज नॉट द कंटेनमेंट। कंटेनमेंट का मतलब होता है कि हम उस एरिया को कंटेन करें जिससे कि बीमारी वो रुक जाए, वो लॉकडाउन से एक उसका मेजर है, लेकिन लॉकडाउन से होगी ऐसा नहीं। लॉकडाउन की वजह से क्या हुआ कि उसके अंदर आना जाना बंद हो गया, लोग मूव नहीं कर पा रहे हैं, तो वो एक एरिया ऐसा माना गया कि जो हमारा हेल्थ वर्कर है, जो गरीब है, या कहना चाहिए हेल्थ वर्कर हमारी ज्यादातर आशा वर्कर है, ANM है, वो जो वर्कर हैं उनको अगर हम ये कहें कि आप अंदर जाकर इस एरिया में आप हाउस टू हाउस सर्वे कर लीजिए या कॉन्टेक्ट ट्रेसिंग कर लीजिए, तो वो ज्यादातर बहुत ही अनमाने मन से करते थे या नहीं करते थे। उसका रीजन बिल्कुल समझ में आता है कि उसको डर लगता है कि अगर मैं किसी ऐसे घर में गई जहाँ पर कांटेक्ट मेरे को हो सकता है तो मैं क्यों जाऊँ। तो वो जो एक कंटेनमेंट के मेजर्स जो बहुत ही जरूरी हैं उसमें है कांटेक्ट ट्रेसिंग एंड सर्विलेंस। जो कांटेक्ट ट्रेसिंग है उसका पर्पज ये होता है कि इमीडिएटली हम ऐसे लोगों को पता लगा लें जो पॉजिटिव के कॉन्टेक्ट में आए थे और हम उनको या तो आइसोलेट करें या हम क्वारंटाइन करें। अगर उनमें साइन सिम्टम है तो हम आइसोलेट करेंगे उनको। तो वो जो माहौल ऐसा बना और डर का माहौल जो बन गया तो लोगों ने छुपाना शुरू किया, फिर हमारे वर्कर भी नहीं जा पा रहे हैं, तो उससे माहौल और बिगड़ गया। ये होना चाहिए था कि हम उन्हें एजुकेट करते, वो लोग खुद अपने आप ही निकल के आते। अगर उनको साइन सिम्टम है तो वो खुद ही रिप्रेजेंट करते और हॉस्पिटल आते। अब हॉस्पिटल भी बंद हो गए, ट्रांसपोर्टेशन बिल्कुल बंद हो गया। तो कहना चाहिए ये सारा कुल मिला के इसमें फायदे की बजाय ये काफी नुकसानदायक मुझे लगता है कि सोशल एंगल से अगर हम कहें
नुकसान। डॉक्टर अनिल कुमार गुप्ता साहब से मैं यही सवाल पूछूंगी कि पॉलिसी के लिहाज से जाहिर है कि ये एक बड़ा इशू था, और ये भी है बदकिस्मती से कि जब तक वैक्सीन नहीं आती और हमें ये नहीं पता लगता कि वैक्सीन कितनी इफेक्टिव है, तो ये तो बीमारी और वायरस जो है वो सारों तक भी चल सकता है। तो क्या पॉलिसी में कोई तब्दीली हुई अब ये जो लॉकडाउन और कंटेनमेंट की बात हुई कि अगर दोबारा जरूरत पड़ी तो किस तरह का लॉकडाउन होगा?
जुगल किशोर साहब ने इस पे थोड़ा सा रोशनी डालने की कोशिश करी, लेकिन मैं इसको ऐसे नहीं कहता कि इससे बहुत नुकसान हुआ है या फायदा हुआ है। उसका कारण ये है कि ये एक एक्सपेरिमेंट था, और एक्सपेरिमेंट जब शुरू के हालात जब बने, पूरी दुनिया में जिस तरह से हालात बने तो पूरा डर का माहौल था, और जो भी हमारी मीडिया में दिखता था, चाहे वो इंटरनेशनल मीडिया में हो, चाहे वो नेशनल मीडिया में हो, चाहे वो लोकल मीडिया में हो, और उसकी वजह से जो डर के हालात पैदा हुए, मन में जो डर आया, जो सोसाइटी में भी आया, जो गवर्नमेंट के लोग होते हैं वो सोसाइटी का ही आईना होता है, तो गवर्नमेंट के लोगों में भी ये बात आया, क्योंकि सडनली जब केसेस आ रहे थे और डेथ्स हो रहे थे तो वो समझने की बात थी कि अभी क्या कर सकते हैं। इसलिए जब वो पहले लॉकडाउन के मेजर्स आए, फिर उसके बाद जो सेकंड लॉकडाउन हुआ तो उसमें कुछ चीजों में उसमें ढील भी दी गई, और अलग अलग जगह अलग अलग थोड़े से एक्सपेरिमेंट रहे। कहीं पर थोड़े से जो फोर्सेस हैं उनको हार्श होना पड़ा, कहीं पर हार्श नहीं होना पड़ा, लोगों ने बहुत कोऑपरेट किया। कहीं पे तो ऐसा हुआ कि मार्केट बंद करने के कोई ऑर्डर सरकार ने नहीं दिए, जो मार्केट एसोसिएशन है उन्होंने खुद से डिसाइड किया कि हम मार्केट को बंद रखेंगे। लेकिन मुझे लगता है कि अब जिस तरीके से जो पेंडेमिक के सूरत हाल बन रहे हैं और साथ में हम बाकी एक्टिविटीज को खोल रहे हैं, क्योंकि बिजनेसेस को भी हमको धीरे धीरे बहाल करना है, इकोनॉमी को बहाल करना है, तो लॉकडाउन के सूरत हाल तो मुझे नहीं लगता है कि बनेंगे। हाँ, अभी जो बात हो रही थी कंटेनमेंट वाली स्ट्रेटजी कभी शायद ऐसी यूज करनी पड़े, लेकिन उस पर अभी भी कोई ऐसा सोचना नहीं है, क्योंकि अब जिस तरीके से लोग ठीक हो रहे हैं, और जो सबसे बड़ा पॉलिसी में जो एक सुधार की जरूरत है, और सिर्फ पॉलिसी में सुधार की जरूरत नहीं है, क्योंकि पॉलिसी बनाना तो आसान होता है, पॉलिसी को एक्चुअली इम्प्लीमेंट करना असली बात होती है।
जी बिल्कुल।
तो जो उसको इम्प्लीमेंट करने की बात है वो है हेल्थ सेक्टर में पूरा का पूरा एक बहुत सुधार की जरूरत है, और हेल्थ सेक्टर में नेशनल लेवल से लेकर के और हमारा जो स्टेट लेवल है, इसके बाद जो हमारे डिस्ट्रिक्ट, जैसे पाकिस्तान और हिंदुस्तान और आसपास के मुल्कों में हमारा एक डिस्ट्रिक्ट का एक मॉडल होता है, और डिस्ट्रिक्ट मॉडल एक्चुअली जो रियल जो गवर्नेंस का मॉडल होता है वो डिस्ट्रिक्ट का होता है। तो डिस्ट्रिक्ट होती है, उसके बाद फिर हमारे सेंटर्स होते हैं, सब सेंटर्स के हॉस्पिटल्स होते हैं, फिर जैसे प्रोफेसर जुगल किशोर साहब अभी टच कर रहे थे, बात कर रहे थे, आशा वर्कर्स होती हैं। तो ये जो हमारा जो मेडिकल का पूरा एक सिस्टम है इसमें बहुत स्ट्रेंथन करने की जरूरत है, क्योंकि ये हम जो अभी बहुत जिनको हम डेवलप्ड कंट्रीज मानते थे उनके मुकाबले में हमारे यहाँ काफी पीछे हैं। लेकिन उसके साथ साथ ये भी बड़ी बातें देखें कि जहाँ के जो मेडिकल फैसिलिटीज बहुत अच्छी थी, हेल्थ सिस्टम बहुत अच्छे थे, उनमें भी चंद हफ्तों तक कुछ ऐसे हालात वहां पे भी हुए हैं कि वहां पर भी बहुत डर का माहौल पैदा हो गया था। तो वो बात को भी समझने की जरूरत है कि जो एक डिफ्रेंशिएट करना कि ये बहुत ही डेवलप मुल्क थे और ये डेवलपिंग मुल्क थे या अंडर डेवलप मुल्क थे, तो अलग अलग तरीके के एग्जांपल आए। इंडोनेशिया की बात हम करें तो पहले वहां पे एकदम से कंट्रोल हो गया, फिर इसके बाद जो सेकेंड वेव आई वो काफी बड़ी वेव आई, फिर इसके बाद धीरे धीरे वो ठीक हुई। तो तरह तरह के एग्जाम्पल्स हैं, और अभी अभी एक किताब भी आ रही है, उसमें प्रोफेसर जुगल साहब का भी कंट्रीब्यूशन है, एक इंटरनेशनल पब्लिशर से किताब आ रही है जिसमें पूरी दुनिया के इस तरह के एक्सपीरियंसेस को हम लोग ने डालने की कोशिश करी है, कोविड पेंडेमिक के समय में कैसे उनको अलग अलग कंट्रीज ने और अलग अलग जो सेक्टर है उन्होंने उसको डील करने की कोशिश करी। तो पॉलिसी में सबसे बड़ी बात मुझे यही लगती है कि हेल्थ सेक्टर को कैसे हम स्ट्रेंथन करें, और जो हेल्थ के बारे में इंसान की हैबिट, इंसान की और सिस्टम की, वो पूरा हैबिट के अंदर कैसे लाएं, वो बहुत जरूरी है। जैसे अभी उन्होंने हेल्दी स्कूल की बात करी, हेल्दी स्कूल मुझे लगता है एक बहुत ही आइडियल जो टर्म है वो हम इसको लेके चल सकते हैं, और पूरी दुनिया में एक मुहिम होनी चाहिए कि हेल्दी स्कूल। दूसरी बात ये, अभी भी हमको ये लेना पड़ेगा कि इसकी जो शुरुआत हुई है उससे भी हमको एक मैसेज मिला है, और उसको हम कैसे पॉलिसी में लेके जाएंगे। इसकी शुरुआत हुई है कि हमने जो जो कुदरत है उसके साथ हमने कभी छेड़छाड़ जहां पे नहीं करनी चाहिए, शायद हमने वो बेवजह थोड़ा ज्यादा छेड़छाड़ अगर हम करते हैं, तो पहले भी जो इस तरह के डिसीजेस निकल के आई हैं जो जो नेचर से आती हैं, जो कुदरत के खजाने में बहुत सारे वायरसेस और बैक्टीरिया ऐसे होते हैं जो एक्चुअली ह्यूमन के लिए बहुत ही खतरनाक हो सकते हैं, और हम उस पर अगर छेड़छाड़ करते हैं तो शायद हमें ये भी सोचने की जरूरत है कि हमारी पॉलिसी में वो भी लाने चाहिए कि जो चीज हमारे खाने के लिए बनी है वो हमारे खाने के लिए बनी है, जो चीज हमारे इस्तेमाल के लिए बनी है वो बनी है। तो जब तक पूरा रिसर्च नहीं हो, उन चीजों को अलग से ही रखना, कुदरती तरीके से रखना, उनको दूर रखना, वो भी शायद जरूरी है। तो ये भी हमें एक पॉलिसी का एक लेसन है कि जो जो एनवायरमेंट का कंजर्वेशन है और जो क्लाइमेट चेंज की वजह से जो जो चेंजेस हालात आ रहे हैं, कहीं ना कहीं अभी लोग इस पे भी एक रिसर्च कर रहे हैं कि क्या इस पैंडेमिक के साथ भी उसका कुछ कनेक्शन हो सकता है।
तो बहुत मुख्तसर मैं शालिनी जी आखिर में आप तीनों से पूछूंगी, सबसे पहले आपसे क्या आपको नजर आता है कि सबसे बड़ा चैलेंज क्या होगा COVID-19 के बाद की दुनिया में आपके लिए?
इकोनॉमी बहुत इफेक्ट हुई है, इसको रिकवर कर पाना एक चैलेंज है। बच्चों के अंदर वापस से वो एक्साइटमेंट लाना शायद से एक चैलेंज होगा, क्योंकि मैं सभी में देख रही हूँ अपने बहुत सारे ऐसे लोग हैं, सभी के बच्चे हैं, कोई भी बच्चा इंटरेस्टेड नहीं है बहुत पढ़ाई वढ़ाई में, बाहर जाने में नथिंग, कुछ नहीं है। तो ये सारी चीजें एक डिफिकल्ट, मुझे तो लगता है कि बहुत बड़ा चैलेंज है कि बच्चों को वापस से पहले वाले डिसिप्लिन में लेके आना, ये सभी के लिए मुश्किल होगा, इकोनॉमी को भी मुश्किल है, हमें एज अ बिजनेस पर्सन, हम लोगों को जो नुकसान हुए हैं उसको रिकवर कर पाना भी एक चैलेंज है।
और किशोर जी यही सवाल आपसे,
हमारे लिए चैलेंज तो जैसे अनिल जी ने कहा कि हेल्थ के ऊपर फोकस की जरूरत है, तो एक चैलेंज है कि उसको हम कैसे हेल्दी बनाएं, हेल्थ को कैसे हेल्दी बनाएं। सिर्फ अकेले नहीं बनेगा वो, तो उसके लिए मल्टी सेक्टर की जरूरत है, वो एक बहुत बड़ा चैलेंज है। सब अपना अपना सेक्टर मान के चलते हैं कि हमारा सेक्टर सबसे इम्पोर्टेंट है, इसके बगैर कुछ नहीं हो सकता। तो उन सबको ये समझने की जरूरत है कि सबकी हेल्थ जरूरत है, तभी वो सारे सेक्टर हेल्दी हो सकते हैं या चल सकते हैं। कोऑर्डिनेशन एंड कोऑपरेशन एंड कोलैबोरेशन, ये हमें एक बहुत बड़ा चैलेंज लगता है, लेकिन सबको अपना किसी को कम करके ये ध्यान दे रहे कि अगर आपके पास में हेल्थ नहीं है तो आप किसी भी तरह की प्रोग्रेस करने में सक्षम नहीं है या नहीं कर पाएंगे। और ये बहुत अच्छी बात अनिल जी ने कही कि जो इतने डिजास्टर हो रहे हैं तो हमें एक नए ढंग से सोचने की जरूरत है। तो एक बड़ा चैलेंज है कि हम अपने सारे डेवलपमेंट को सस्टेनेबल कैसे करें, ये चैलेंज है।
तो डॉक्टर अनिल आपसे भी यही मुख्तसर सवाल।
हेल्थ सबसे इम्पोर्टेंट है, और हेल्थ की जब बात करेंगे तो मेंटल हेल्थ और जो फिजिकल हेल्थ है वो दोनों हमें साथ में लेनी होगी, और इस पेंडेमिक के दौरान ये दोनों बातें बिल्कुल उभर के आई है। अगर वो इन्फेक्शन से बच रहे थे तो साइकोलॉजिकल या मेंटल हेल्थ के चैलेंजेस को फेस किया उन्होंने, और वो उसके रिपरकशंस तरह तरह के आए, चाहे वो वॉयलेंस के फॉर्म में आए, एग्रेशन के फॉर्म में आए, डिप्रेशन के फॉर्म में आए, जो भी। तो जैसे कि मैंने पहले भी बोला था की हेल्थ बिहेवियर की बात करनी शुरू करेगी कि हेल्थ को हम बिहेवियर के अंदर कैसे ला दें।
बहुत शुक्रिया डॉक्टर अनिल कुमार गुप्ता, डॉक्टर जुगल किशोर साहब और शिलानी त्रिपाठी जी, आप हमारे प्रोग्राम में आए। और सब मैं खासतौर पर आप लोगों का ही शुक्रिया अदा करूंगी। बहुत कम मैं ये देखती हूँ बात के जो टेक्निकल जो बातें हैं उन्हें कोई इतनी अच्छी तरह आम आदमी की जबान में समझा सके।
आपका बहुत बहुत शुक्रिया।
इसके साथ ही शहनाज अजीज को इजाजत दीजिए आज का ये प्रोग्राम खत्म करने की। तो आइंदा प्रोग्राम तक के लिए आप सबको खुदा हाफिज।
इस प्रोग्राम में जो नुक्ताहाए नजर पेश किए गए वो खालिसतन हमारे मेहमान शुराका के थे और वो वॉइस ऑफ अमेरिका के मौकिफ